ठीक है, क्लास शुरू कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलाम अला इबादिही अल्लज़ीन इस्तफा, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दता फिल क़ुरबा। سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. اس کلاس میں ہم سلسلہ دروس امور خانداری میں حسن انتظام میں ریلیشن شپ مینجمنٹ یعنی رشتے داریاں نبھانا کا موضوع پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہمارے حضرت کے دروس کے سلسلے ہیں جو انہوں نے رمضان المبارک کے ایک اعتکاف کے پروگرام کے اندر کیے تھے۔ تو ان میں ہر درس جو ہوتا تھا وہ ایک دن صبح کے وقت ہوا کرتا تھا، اور وہ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے پر مشتمل ہوتا تھا، لیکن اس 1 گھنٹے والے درس کو پھر ہم کئی گھنٹوں تک چلاتے ہیں، عادت سے مجبور ہیں جو بھی کہیں۔ تو رشتہ داریاں نبھانا کا جو درس ہے وہ کئی دنوں سے چل رہا ہے، یعنی کئی ہفتوں سے چل رہا ہے۔ اس میں ہم شوہر کے ساتھ ریلیشن شپ مینجمنٹ ابھی پڑھ رہے ہیں، خاوند سے تعلق۔ تو اس میں کہاں پر ہیں ہم؟ اس میں ہم تھے کہ حالات کے ساتھ اپنے آپ کو بھی بدلے، یعنی کسی کے ساتھ ریلیشن شپ جب بنانی ہوتی ہے نا، تو پھر یہ ساری چیزیں پھر کرنی ہوتی ہیں جو پیچھے بھی پڑھا تھا، مفروضوں سے بھی بچنا ہوتا ہے، اور مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے، بات کو صحیح انداز سے کرنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے، قابل قبول بننا ہوتا ہے، یعنی بہت ہی ریجڈ نہیں بننا بلکہ قابل قبول بننا، ایکسیپٹیبل بننا، خاوند کی بات دوسروں سے نہ کریں، یہ ساری باتیں بھی دیکھنی پڑتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بھائی ریلیشن شپ تو انسانوں کے درمیان ایسے ہی بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو خاوند کے ساتھ ریلیشن شپ میں اگلا ٹاپک تھا حالات کے ساتھ اپنے آپ کو بھی بدلیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ پھر ایک اگلا پوائنٹ جو بہت اہم ہے کہ رول اوور ود دا چینجز۔ تو رول اوور کا لفظ بہرحال ہوگا انگریزی کے اندر استعمال کیا جاتا ہوگا، لیکن ہم نے اس کو پچھلی کلاس میں بھی سمجھایا تھا کہ اس کو اڈیپٹیبلٹی بھی کہتے ہیں، ٹو لرن ٹو اڈیپٹ ود دا چینجز۔ ٹھیک ہے، ایڈجسٹبلٹی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، یعنی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا۔ یہ کچھ ایسے الفاظ ہیں انگریزی کے جو کہ اب اردو میں بھی بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، ایڈجسٹ کرنا۔ تو فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر شادی سے پہلے لڑکی کے اور حالات ہوتے ہیں، شادی کے بعد اس کو اپنے آپ کو بدلنا چاہیے۔ تو یہاں پہ چونکہ لڑکیوں سے بات ہو رہی ہے، مطلب خواتین سے، آپ بھی خوش ہو جائیں گے آپ کو لڑکیاں کہا جا رہا ہے، تو خواتین سے بات ہو رہی ہے تو اس وجہ سے خواتین کو ہی کہا جائے گا کہ بھئی اپنے آپ کو بدلنا ہوتا ہے۔ مردوں سے بات ہوتی ہے تو پھر مردوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو بھی اپنے آپ کو بدلنا ہوتا ہے، شادی سے پہلے آپ الگ ہوتے ہیں، شادی کے بعد آپ کو مختلف انسان، مطلب حالات کے مطابق بدلنا ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی اس کے اندر حضرت نے آگے مردوں کو بھی بات کری ہے، حالانکہ خواتین کو لیکچر ہو رہا تھا۔ تو مثال کے طور پر شادی سے پہلے اور حالات ہوتے ہیں، شادی کے بعد اپنے آپ کو بدلنا چاہیے۔ جو ماں باپ کے گھر کے ناز نخرے تھے وہ آگے خاوند کے پاس نہیں چلتے ہیں، تو اس کو تبدیلی کے لیے ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو ماں باپ پھر ماں باپ ہوتے ہیں، اکثر ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ ناز نخرے اٹھاتے ہیں، نہ بھی اٹھانا چاہیں پھر بھی اٹھا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ایون تربیت کی وجہ سے کچھ ماں باپ جو ہیں وہ ناز نخروں کو کم کر دیتے ہیں، یعنی برداشت کرنا کم کرتے ہیں تاکہ تربیت ہو جائے، لیکن پھر بھی ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے فطری محبت ڈالی ہوتی ہے، شفقت ڈالی ہوتی ہے ماں باپ کے دل میں کہ ان کے ساتھ چل جاتا ہے معاملہ نا۔ تو اب جو نئے گھر میں جانا ہوتا ہے، چاہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہو چاہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم نہ بھی ہو، خالی شوہر کے ساتھ بھی رہنا، तो शौहर जो होता है वो बहरहाल शौहर ही होता है, वो अब्बू नहीं होता, ठीक है। और अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो फिर वहां पे सास ससुर जो होते हैं वो बेशक वो भी एक माँ बाप जैसा रिश्ता है, लेकिन उसमें अंदर भी फर्क होता है। तो इस वजह से बेहतर तो यही होता है कि माँ बाप के घर में ही जो है ना वो नाज नखरे कम होते जाएं। और सही तरतीब तो यही है ना कि जी जब आप छोटे होते हैं तो उस वक्त नाज नखरे फिर भी ज्यादा होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बड़े होने के साथ साथ ये कम होते चले जाते हैं। तो फिर आसान होता है इवन नए लोगों के साथ भी मैनेज करना मामला को। जहाँ पे बचपन में जैसे नाज नखरे थे वैसे ही जो है वो लड़कपन में भी वैसे ही चलते रहते हैं, तो फिर जाहिर है उनके लिए एक बहुत बड़ा शौक होता है शादी के बाद। इसी वजह से आज के दौर के अंदर कहते हैं नहीं करना भी मुझे शादी, ठीक है, शादी करनी ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि नाज नखरे जो है वो फिर कौन उठाएगा मेरे, तो शादी से इनकार कर देती है या डिले करने की जितना मुमकिन होता है उसको डिले करने की कोशिश करती हैं। लेकिन ऐसे तो फिर दूसरे मसाइल खड़े हो जाते हैं ना, और दूसरे मसाइल बहुत बड़े बड़े मसाइल होते हैं जो कि शादी को डिले करने से या शादी ना करने से फिर खड़े होते हैं। तो जो सही तरीका है उसी को, वही हम किसी से बात कर रहे थे पिछले दिनों, अगर वो सुन नहीं है तो भाई नाराज वाराज नहीं हो जाए करें खामखा में, बस आपसे बात हुई तो जहन में एक बात आ गई, तो हमने अपनी जैसी एक बिल्कुल ही अनाड़ी किस्म की मिसाल दी कि भाई किसी शख्स को अगर चलने में दर्द होता है, ठीक है, किसी शख्स को चलने में दर्द हो रहा है, तो अब वो जो है ना वो कह रहा है कि भाई मैं तो नहीं चल सकता ना, मैं तो बस बैठा रहूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे चलने में दर्द होता है, तो अब मैं नहीं चलूंगा, बस मैं बैठा रहूंगा, ठीक है। तो भाई उस शख्स को ये एडवाइस करते हैं ना कि भाई आप दर्द के लिए कोई दवा करें, दर्द को दूर करने की कोशिश करें, पैनाडोल शेनाडोल खाएं या कुछ और दर्द की का इलाज कर लें, ये चले बगैर आप कैसे जिंदगी गुजारेंगे, ठीक है। तो अगर आप बैठी रहेंगी या बैठे रहेंगे तो फिर जिंदगी कैसे गुजरेगी, तो भाई दर्द का इलाज कर लें, डॉक्टर के पास चले जाएं, दवाइयां ले लें, कोई और एक्सरसाइज वगैरह कर लें ताकि दर्द खत्म हो जाए। ये तो उसका हल नहीं है ना कि अब आप बैठे रहें, ठीक है। तो ये जो छोटी सी एक अनाड़ी किस्म की मिसाल है, लेकिन ये बहुत सारी जगहों पे अप्लाई होती है, ठीक है, कि भाई अगर शादी के बाद नाज नखरे उठाने वाला नहीं मिलेगा तो अब इसका ये हल है कि शादी करना छोड़ दो, राइट। यानी अगर आपको चलने में दर्द होता है तो अब आप चलना छोड़ दें, ठीक है। तो उसी तरीके से शादी करने के बाद नाज नखरे उठाना वाला नहीं मिलेगा तो फिर शादी करना ही छोड़ दो या उसको डिले करना शुरू कर दो, ठीक है ना। 40 साल के बाद शादी करने के बारे में सोचेंगे, जैसे आजकल यही जो बात चल रहा है, प्रोफेशनली करियर ओरिएंटेड पढ़ने लिखने वाली तालीम के जेवर से अपने आप को आरास्ता पर आरास्ता तर आरास्ता तर आरास्ता करने वाली जो होती हैं वो फिर 40 साल के बाद सोचती हैं कि अच्छा शादी चलो देखते हैं शादी करना है कि नहीं करना है। अभी किसी ने बताया कि उनके किसी कॉलीग ने जो कॉलेज में साथ पढ़ती थी तो उन्होंने जो है ना वो अभी शादी करी है, यानी 45 ईयर्स की एज आने के बाद अब उनकी शादी हो रही है, ठीक है। तो पढ़ लिख करके माशाल्लाह इतना पैरों पे खड़ी के बस शादी करने की जरूरत ही कोई नहीं है। तो ये तो बहुत आम हुआ है ना, और ये कोई अमेरिका और यूरोप की दास्तान ही नहीं है, ये तो पाकिस्तान की दास्तान है, ठीक है। मुमलकत खुदादाद जिसको कहते हैं, इस्लामी जमहूरिया कहते हैं, वहां पे ये मामला चल रहा है। तो भाई नाज नखरे का इलाज कर लें, ठीक है, कुछ तरबियत तालीम समझ लें बात को, ठीक है, तो मसला हल हो जाएगा। यानी मसला अगर है तो उसका कोई इलाज कर लें ना, ये तो नहीं है कि अब आप जो मैंने करना ही नहीं है, शादी नहीं करनी है, जैसे चलना ही नहीं है, तो ये मसला होता है। शैतान ये कहता है कि नहीं कि तब छोड़ दो इस बात को, जमाने से हट करके, या जो अल्लाह का बनाया हुआ तरीका है, जमाना का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए आजकल, ठीक है, क्योंकि जमाने का मतलब कुछ और ही होता है फिर। तो इसमें अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम, ठीक है, अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम से हट करके अपना कोई नया निज़ाम बना लेना ये तो तरीका नहीं है ना। आप तो उस तरीके से तो फिर आप बिल्कुल ही यानी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, अल्लाह के निज़ाम से हट करके कैसे चलेंगे। तो तरबियत ठीक है, और इससे रिलेटेड जो इल्म चाहिए होता है वो, ठीक है, डिग्रियां वाला जो इल्म होता है ना आजकल की यूनिवर्सिटियों वाला, वहां पे ये सारी चीजें नहीं सिखाई जा रही होती है कि नाज रखे को कैसे मैनेज करना चाहिए। तो फरमाते हैं कि जो माँ बाप के घर के नाज नखरे थे वो आगे खाविंद के पास नहीं चलते हैं, उसको तब्दीली के लिए जहनी तौर पर तैयार होना चाहिए। फिर इसके बाद औलाद हो गई, तो औलाद होने के बाद मियाँ बीवी के ताल्लुक में एक तब्दीली आती है, वो पहले जैसे ताल्लुकात नहीं हो सकते, ठीक है, इसलिए खाविंद को भी तवक्को करना चाहिए। एक्सपेक्ट का लफ्ज भी यहाँ पे इसने भी डाला है, तो खाविंद को भी यानी एक्सपेक्टिंग रहना चाहिए, यानी मुतवक्के रहना चाहिए, और बीवी को भी तैयार रहना चाहिए। एक्चुअली तैयार रहना ज्यादा प्रॉपर वर्ड लगता है यहाँ पे। तो हजरत जी तो जाहिर है ऐसी बात है, यानी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन कुछ किताबी शक्ल में ढालने में ना कुछ आगे पीछे हो जाता है। तो फरमाया कि इसके लिए खाविंद को भी तैयार रहना चाहिए और बीवी को भी तैयार रहना चाहिए। हमने देखा है कि बीवी बच्चे में मसरूफ होती है और खाविंद गिरे करना शुरू कर देता है, ठीक है, मेरी औलाद हो गई, तो अब औलाद तो एक फुल टाइम जॉब होती है ना, ठीक है, अनलेस कि आप उसको उठा करके किसी दूसरे के हवाले कर दें तो फिर तो दूसरा मसला खड़ा हो जाता है। लेकिन अगर अपने औलाद को खुद ही हैंडल करना है, जो कि तरीका यही है, तो फिर तो वो 24 आवर्स की बेसिकली सही बात होती है कि माँ जो होती है वो अपने बच्चे की 24 घंटे की एक तरह से गुलाम होती है, ठीक है, तो उसी के अराउंड उसका पूरा का पूरा स्केड्यूल चल रहा होता है। तो अब खाविंद साहब जो है वो गिले करना शुरू कर देते हैं कि मुझसे तो आपको मोहब्बत ही नहीं रही, आपके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, ठीक है। तो खाविंद को समझना चाहिए कि भैया वो माँ बन गई है, बच्चे के साथ उसका ताल्लुक एक फितरी ताल्लुक है, तो वो बच्चे को अटेंड नहीं करेगी तो कौन अटेंड करेगा, तो मेड अटेंड करेगी, या जो है वो आजकल तो सास साहिबा अटेंड कर रही होती हैं, बड़े फखर के साथ अटेंड कर रही होती हैं, दिल में तो उनके जो है वो अजियत गुजर रही होती है कि मैंने अपने बच्चे को भी पाला, अब मैं जो है वो तुम्हारे बच्चे को भी पाल रही हूँ, क्योंकि वो बच्चा जो होता है अमूमन जो है वो बेटी का बच्चा नहीं होता, वो बहू का बच्चा होता है, ठीक है, तो बहू तो फिर इतनी अच्छी नहीं लग रही होती है ना, तो बहू के बच्चे को पालना पड़ रहा होता है। क्यों क्यों पालना पड़ रहा है भाई आपको, आपको बहू के बच्चे को, ठीक है, इसका जवाब अगर आप दे दें, जो सास अम्मा होती हैं उनको बहू के बच्चे को क्यों पालना पड़ता है, ये इसका जवाब तो आप देंगे, सही वाला जवाब चाहिए, वैसे सही वाला जवाब, ठीक है, गलत वाला जवाब जवाब नहीं चाहिए। तो सास अम्मा को बहू के बच्चे को क्यों पालना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके ऊपर एक अजियत गुजर रही होती है। बाहर तो लोगों को बड़ा वो अच्छा चेहरा दिखाती है, अपनी मैं तो बहुत खुश हूं, ठीक है, बेटे की मोहब्बत की वजह से पालना पड़ता है, चले भाई ठीक है, बेटे की मोहब्बत की वजह से। और बहू को जॉब करनी होती है, ठीक है, बहू को जॉब करनी होती है, क्यों जॉब करनी होती है बहू को, बहू कमाई करती है, हाँ, घर में पैसा लाने के लिए, ठीक है, क्योंकि बहू काम पे जाती है, बहू की जॉब की वजह से, बिकॉज द बहू इज वर्किंग, ठीक है, तो इस वजह से बहू के बच्चे को फिर सास मोहतरमा को पालना पड़ता है। तो भाई क्या बहू जो है वो इनके घर में पैदा हुई थी, बहू इनके घर में पैदा हुई थी कि अब जो है वो उसको जॉब पे जाना पड़ता है, तो भाई ठीक है, ऐसा तो नहीं होता ना कि बहू इनके घर में तो नहीं पैदा हुई थी ना, तो ये तो अपने बेटे के लिए बहू लेकर आई है ना, या इनका बेटा खुद बहू लेकर के आया है अपनी मर्जी से लेकर के आया है, ठीक है, तो या तो बेटा अपनी मर्जी से बहू लेकर के आया है, यानी अपनी बीवी लेकर के आया है, या सास अम्मा जो है वो अपनी मर्जी से बहू लेकर के आई, ठीक है, तो आप क्यों ऐसी बहू लेकर के आई, सही है, उस वक्त तो बड़ा दिमाग पे ये सवार था ना कि जी पढ़ी लिखी बहू लेकर के आनी, पढ़ी लिखी से मुराद क्या, जाहिल तो नहीं कोई कह रहा लाने के लिए, ठीक है, हमारा दीन तो जहल के खिलाफ है, जहालत के खिलाफ है, हमारा दीन तो इल्म से ही शुरू हुआ, इक़रा बिस्म रब्बिक अल्लज़ी खलक, ठीक है, हमारा दीन तो तालीम के खिलाफ हो ही नहीं सकता, ठीक है, लेकिन कौन सी वाली तालीम, ये कोई नहीं पूछता कौन सी वाली तालीम, ठीक है, तो बहू तो वो आप लेकर के आई हैं, यानी आपको चाहिए थी कोई करियर ओरिएंटेड, जो कमा के लेकर के आ सके घर के अंदर। तो जब आप ऐसी बहू लेकर आई हैं तो फिर उसका बच्चा कौन पालेगा? ठीक है, जाहिर सी बात है आप ही पालेंगी। अगर मेड अफोर्ड नहीं कर सकती तो आपको पालना पड़ेगा। या ये कि बेटा अपनी मर्जी से ऐसी बीवी लेकर के आया, तो आपने बेटे की ऐसी जहन साजी क्यों करी कि वो करियर ओरिएंटेड बहू लेकर के आए? आपने अपने बच्चे की ऐसी जहन साजी क्यों करी कि वो करियर ओरिएंटेड बीवी लेकर के आए? इसमें भी आप ही का हाथ है, इसके लिए भी आप ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, बहू के बच्चों को पालना पड़ता है क्योंकि अपने बच्चों को नहीं पाला होता। इन्होंने लिखा, मजे की बात लिखी, अपने बच्चों को नहीं पाला होता। पाला तो होता है लेकिन शायद पोसा नहीं होता। पाला पोसा दोनों काम करना होता है ना, तब फिर जाकर के इंसान का बच्चा वो बनता है, तब उसको समझ में आता है कि क्या चीज अहम है और क्या चीज नहीं अहम है। तो बहरहाल, तो बच्चे को वो अटेंड नहीं करेगी तो कौन अटेंड करेगा? इसका बड़ा आसान सा जवाब है, सास अटेंड करेंगी। राइट, अजीत को लगता है जवाब नहीं पता था, नहीं पता था अजीत को, अजीत को सारे तमाशे पता होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो नहीं रही है, इस वजह से ये फरमाया है कि वो नहीं पालेगी तो और कौन पालेगा। ठीक है, तो इसको चेक करना चाहिए और इसको देखना चाहिए। ठीक है, यानी ऐसी बेवकूफी की बातें नहीं करनी चाहिए। वैसे तो अल्लाह ताला ने तो अपना निजाम बनाया हुआ है। ठीक है, अल्लाह ताला के निजाम क्या है कि जब अल्लाह ताला औलाद देते हैं ना, ठीक है, तो औलाद जो है वैसे तो माँ के थ्रू अल्लाह ताला देते हैं इस दुनिया के अंदर। ठीक है, लेकिन जो बाप होता है ना, उस बाप के अंदर भी अल्लाह ताला उस औलाद को देख करके, जैसी बाप औलाद को देखता है ना, अपनी सगी औलाद को देखता है, ठीक है, तो उस बाप के अंदर अल्लाह ताला ऐसी फिजिकल चेंजेस पैदा कर देते हैं कि जिसकी वजह से कम अज कम 2-3 महीने तक जो है ना वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। ठीक है, ये मिसाली मर्द की किताब के अंदर हजरत ने इस वाली तहकीक को लिखा है, और हमने मर्दों को ये अच्छी तरीके से समझाया है। वो ना समझे तो उनका मसला है ना, हमने तो समझाया, हजरत जी ने तो समझाया। ठीक है, कि बाप जो है ना इस फेज के अंदर, उसके अंदर भी अल्लाह ताला ऐसी हार्मोनल चेंजेस पैदा कर देते हैं उसकी बॉडी के अंदर, हालांकि बजाय उसने कोई टीका नहीं लगवाया होता, ठीक है ना, उसने कोई दवाई नहीं खाई हुई होती कि अब बच्चा पैदा हुआ है तो अब वो दवाइयां खाना शुरू कर देते हैं, नहीं, कुछ भी नहीं किया होता, लेकिन अल्लाह ताला का ये निजाम है। ठीक है, अब इंसान की खराबी उस वक्त होती है, वो ऐसी बेवकूफी की बातें क्यों करता है कि बच्चा भी हो गया, अब जो है वो समझ में ही नहीं आ रही उसकी, क्योंकि वो अल्लाह के निजाम के खिलाफ जा रहा है। ठीक है, फोर्स कर रहे होते हैं, हम फाइट कर रहे होते हैं अल्लाह के निजाम से। ठीक है, इस वजह से हम ऐसी बेवकूफी की बातें या बेहूदगी की बातें कर रहे होते हैं। ठीक है, बेशर्मी की बातें, बेगैरती की बातें, बेहूदगी की बातें, जो भी बे आप लगा दें इसके साथ, ये सारी बातें हम क्यों कर रहे होते हैं? अल्लाह के निजाम के खिलाफ फाइट करने की वजह से। ठीक है, वरना अल्लाह ताला ने तो निजाम बना दिया था, माँ के अंदर सारी जो जो बच्चे की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो माँ को अल्लाह ताला दे रहे होते हैं, हत्ता के बाप के अंदर भी बच्चे की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक चेंजेस आ रही होती है। ठीक है ना, ये है हमारा अल्लाह, और इस अल्लाह के साथ हमारा क्या रवैया होता है, बस अल्लाह ताला माफ करे हमें। ठीक है, तो बहरहाल फरमाते हैं कि डील विद द चेंजेस इन द लव लाइफ, लव लाइफ के अंदर भी तब्दीली आ रही है, यानी आपकी मियाँ बीवी की मोहब्बत, अल्लाह ताला ने एक अलग फितरी मोहब्बत जो बनाई है, तो भाई इसके अंदर भी तब्दीली आती है ना, अब एक नई चीज ऐड हो गई है, एक नया फर्द आपके अपने जात से रिलेटेड ऐड हो गया है, तो अब तो भाई तब्दीलियां आएंगी ना। तो शादी के बाद मियाँ बीवी के पे गहरे बातचीत करने की, मिलने मिलाने की फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज्यादा होती थी पहले, लेकिन जब एक दो बच्चे हो जाते हैं तो फिर ये कम हो जाता है, तो इस फ्रीक्वेंसी के कमी के लिए भी जहनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। यानी क्या मतलब है कि डोंट फाइट, अल्लाह ताला के बनाए हुए निजाम से लड़ो मत। ठीक है ना, अल्लाह ताला ने तो अपना काम पूरा किया होता है। ठीक है, सुबहान अल्लाह का मतलब यही होता है, अल्लाह ताला अपना काम नाकिस नहीं करते, अल्लाह ताला अपने काम में कमी नहीं करते है। ये मतलब है सुभान अल्लाह का। ठीक है, तो हम जो है वो अल्लाह के निजाम को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, तो हजरत क्या लिख रहे हैं, अल्लाह के निजाम को जहनी तौर पर एक्सेप्ट करो। ठीक है, इसको हम इस तरह से पढ़े ना, तो बात ज्यादा फायदेमंद होगी फिर हमारे लिए। वो क्या, कि अल्लाह के निजाम को जहनी तौर पर एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है, उसके खिलाफ लड़ना नहीं चाहिए। फिर कई मर्तबा उम्र के साथ जिस्म में भी तब्दीलियां आ जाती हैं, और उम्र के साथ जब ये तब्दीलियां आ जाएं तो उनका इसके ऊपर असर पड़ता है, ठीक है। तो जिस्म में तब्दीलियां बच्चों को देख करके आ जाती हैं खाली, तो उम्र के साथ क्यों नहीं आएगी? तो उम्र के साथ और भी ज्यादा तब्दीलियां नजर भी आ रही होती हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी जहनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। जिस खाविंद ने जिंदगी के 50 साल बीवी के साथ गुजार दिए, तो अब बीवी को भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो 20 साल का खाविंद बन करके मेरे साथ रहेगा। जब बच्चे हो जाएं तो अब मियाँ बीवी की एक्टिविटीज पूरी फैमिली के लिए होनी चाहिए, कि जिसमें मियाँ बीवी भी शरीक हो और बच्चे भी शरीक हो, ठीक है। लेकिन माशाल्लाह तालीम का जेवर आज इंसान को इस काबिल नहीं छोड़ता कि वो दूसरों के लिए रहे, दूसरों के लिए जिंदगी गुजारे, ठीक है। तो आज की तालीम और जो मिजाज ये तालीम बना चुकी है पूरे के पूरे मुआशरे का, ठीक है, हत्ता कि अब कोई स्कूल ना भी जाए ना, तो उसका भी मिजाज जो है वो उसके माहौल के असर की वजह से, सोबत के असर की वजह से ये बन रहा होता है, मी माई सेल्फ एंड आई, ठीक है, मैं मेरी जात और मैं और मैं, जिस तरह बकरी करती है ना, मैं, ठीक है। तो बकरी को तो फिर ज़बह करते हैं, तो फिर वो तू 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 पे आती है, ज़बह करने के बाद उसकी खाल उतारते हैं, फिर उसके बाद उसकी अंतड़ियां निकालते हैं, फिर अंतड़ियों को जो है ना पुराने जमाने में बाकायदा एक मशीन, कातने की मशीन जो थी उसमें अंतड़ियां लगाई जाती थी, तो वो मशीन जब चल रही होती थी तो उसके अंदर से तू 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 की आवाज निकल रही होती थी। तो हमारे मशायख ने क्या कहा, पहले मैं करती थी, अब जो है ना वो छुरी के नीचे लाने के बाद और उसकी खाल उधेड़ने के बाद, उसकी अंतड़ियां निकालने के बाद अब तू 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 कर रही है, ठीक है। तो इस तालीमी निजाम के अंदर फिर मैं सिखाई जा रही होती है, तो इस वजह से तू 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 के लिए तैयारी नहीं हो रहे होते, वो तो फिर कब्र में जाएंगे तो फिर तू तू निकलेगी फिर वहां पे जा करके, ठीक है। तो अभी तू तू तो खाली जो है वो तू तड़ाक के लिए निकल रही होती है, दूसरों को दूसरों से लड़ाई करने के लिए तू तू निकल रही होती है, अपने लिए नहीं निकल रही होती। तो कहते हैं कि जी भाई, अब फैमिली के लिए जीना है, बच्चों के लिए जीना है, ठीक है ना। क्या जहालत है, दीनी तालीम भी अल्लामा के दर्जे के हासिल करने के बाद भी जो है ना वो अपने लिए जी रहे होते हैं, ठीक है। दुनियावी तालीम को क्या कहें, अब तो ऐसा मिजाज बन गया, ऐसी जो है वो नफ्स मोटा हो गया, दीनी तालीम के बाद भी अपने लिए ही जी रहे हो, ऐसे दीनी तालीम का क्या फायदा, ठीक है। तो भाई मियाँ बीवी की एक्टिविटीज पूरी फैमिली के लिए होनी चाहिए, कि जिसमें मियाँ बीवी भी शरीक हो और बच्चे भी शरीक हो। खाविंद के साथ इस पर इत्तेफाक करें कि हमने अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी, इस पर इत्तेफाक करें कि हमने अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, क्योंकि कई मरतबा बच्चों की तरबियत के नाम पर मियाँ बीवी का इख्तलाफ ही चलता रहता है, ठीक है। तो इत्तेफाक जो है ना, यानी क्या मतलब है इत्तेफाक का, इसका ताल्लुक बड़ा गहरा है हमारे दरस कुरान के साथ, ठीक है, जो कि अभी पीर के तारे 2 दिन पहले हमने पढ़ा है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या डिस्कशन चल रही है दरस कुरान में, बाहिमी झगड़े, राइट, ये चल रहा है ना दरस कुरान में, सूरह अनआम की जो आयात चल रही है। तो अल्लाह ताला का अजाब 3 शक्लों में आता है, एक ऊपर से आता है, एक नीचे से आता है, एक अंदर से आता है झगड़ों की शक्ल में, ठीक है। तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि इख्तिलाफ राय का होना, जहां भी कुछ अकल समझ रखने वाले लोग होंगे वहां पे इख्तिलाफ राय तो होगी, ठीक है। तो इख्तिलाफ राय का होना बुरा नहीं होता, लेकिन इख्तिलाफ राय को लड़ाई यानी बुग़्ज़ और कीने की हद तक ले जाना, ये मना है, ये हराम है, ठीक है। जो इस हराम का मुर्तकिब होता है तो फिर अल्लाह ताला लड़ाई झगड़े का अजाब उसके ऊपर मुसल्लत कर देते हैं। तो हराम क्या होता है, गुस्सा करना, चाहे वो कीने की शक्ल का गुस्सा हो, चाहे वो जुबान की शक्ल का गुस्सा हो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला तग़ज़ब, गुस्सा मत करो, ठीक है। तो ऐसे मी माई सेल्फ एंड आई की वजह से जो गुस्सा होता है, ये वाला गुस्सा हराम होता है। दीन की वजह से जो गुस्सा होता है ना, वो हराम नहीं होता, अपने नफ्स की खातिर जो गुस्सा होता है वो हराम होता है। तो जब हराम के मुर्तकिब हो गए तो फिर अल्लाह ताला लड़ाई झगड़े का अजाब मुसल्लत करेंगे। ठीक है, तो इत्तेफाक करना, ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर राय का इख्तिलाफ हो रहा है, पॉइंट नंबर वन, उसको आप बुग़्ज़ और कीने की हद तक मत लेकर के जाएं। टेक इट इजी, ठीक है, टेक इट इजी, इतना सर पे मत सवार कर लें उसको, ठीक है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि अपनी राय को जो है वो छोड़ना, ठीक है, अपनी राय को छोड़ने के लिए भी तैयार, ठीक है। खुसूसन अगर आपके सामने कोई आपका बड़ा है, ठीक है, कोई आपसे ज्यादा इल्म रखने वाला है, या कोई दर्जे में आपका बड़ा है, जैसे कि शौहर को अल्लाह ताला ने दर्जे में बड़ा बनाया है, ठीक है, तो उसके लिए अपनी राय को जो है वो पस पुश डालना, ठीक है, ये करना पड़ता है, ठीक है। दो चीजें क्या करनी पड़ती हैं, पहली चीज कि नेगेटिव से बचना है, ठीक है, कि बोझ और कीने में नहीं पड़ना है। दूसरी चीज कि अपनी राय को जो है वो छोड़ना भी, ये भी एक ऑप्शन हमारे सामने होना चाहिए। अगर आप दलील के जरिए से अच्छे अंदाज में दूसरे बंदे को कन्विंस कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, दलील के जरिए से, ठीक है ना। यानी आपके पास कोई ऐसे सॉलिड रीजंस होने चाहिए, कुछ ऐसे सॉलिड जो है वो आपके पास प्रूफ्स होने चाहिए, जिससे कि आप अपने शौहर को कन्विंस कर लें कि बच्चे की तरबियत ऐसे करनी चाहिए, ठीक है, दलील लेकर के आए उसके लिए। जैसे पीछे भी काफी तफसील से इसके ऊपर बात हो चुकी है, दलील से बात करें, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है, आप ये नहीं कर पा रही, या अगर है भी आपके पास दलील लेकिन उसको कन्विंस नहीं कर पा रही, तो देन ठीक है, गिव अप, छोड़ दें उसको। ये तरीका होता है इत्तेफाक करने का, ठीक है, इत्तेफाक करने का ये तरीका। तो काविंद के साथ इस पर इत्तेफाक करें कि हमने अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, क्योंकि कई मरतबा बच्चों की तरबियत के नाम पर मियाँ बीवी का इख्तिलाफ ही चलता रहता है, यानी लड़ाई चलती रहे, ये बुरी बात है। इसको नहीं चल, इसको इस तरह से नहीं चलते रहना देना है। राय का इख्तलाफ होता है, राय के इख्तलाफ को सेटल करना सीखें, सीखना होता है हमें, ठीक है। तो पहले बैठ के तय करें कि क्या करना है क्या नहीं करना, ताकि फिर बच्चों के सामने झगड़े ना हो, ठीक है। तो आपस में जो है वो उसको तय कर लें, चाहे उसके लिए आपको खामिद को कन्विंस करना हो, चाहे उसके लिए जो है वो आपको अपनी राय को छोड़ना पड़े, लेकिन तय कर लें। बच्चों के सामने इस किस्म की जो है ना वो आर्ग्यूमेंटेशंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें एक पॉजिटिव पहलू मजीद क्या है, वो ये है कि ये जो बच्चों के बारे में डिस्कशन है ना, ये एक बेहतरीन डिस्कशन है मियाँ बीवी के दरमियान, ठीक है, बेहतरीन डिस्कशन है, जिसकी वजह से आपस में एक एक कम्युनिकेशन का बहाना है ये। वरना ऐसे भी घराने होते हैं कि जिसके अंदर मियाँ बीवी के दरमियान बात ही नहीं हो रही होती, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या बात करें, किस टॉपिक पे बात करें। और ये ज्यादातर कहाँ पर होता है, ज्यादातर जो है ना ये दीनदार घरानों के अंदर होता है, ठीक है। दीनदार घरानों में ये होता है कि अल्लाह के नेक बंदे हैं माशाल्लाह, जब भी तो दीनदार कहलाते हैं ना, तो अब वो उन्होंने जो है वो फिल्में देखनी बंद कर दी होती हैं, ठीक है, या कभी देखते ही नहीं है फिल्में, ठीक है। तो अब जब फिल्में नहीं देख रहे हैं, तो जो फिल्में होती हैं ना, जो कि आप ड्रामे उल्टे सीधे देख रहे होते हैं, तो वो एक बहुत यानी टॉपिक ऑफ डिस्कशन होता है वो लोगों के दरमियान, ठीक है, कि भाई उस फिल्म में ये हुआ, उसने ये किया, वो ऐसा था, वो ऐसी थी, उसको ये पहन कर आई थी, और वो ये पहन कर आया था, और ये फिल्मों के बारे में बात कर रहे। तो ये एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन होता है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन, ठीक है। तो जो दीन की तरफ आते हैं लोग, वो फिल्में देखने बंद कर देते हैं, बहुत अच्छी बात है, ऑफ कोर्स बंद करना लाजिम है, बंद करना, ठीक है, वरना तो आप मारे जाएंगे बुरी तरीके से जानून के अंदर, ठीक है। तो फिल्मों को तो देखना बंद करना है, ये नहीं कह रहे कि नहीं फिल्में बंद ना करो ताकि डिस्कशन होती रहे फिल्मों के ऊपर, कोर्स बंद करना है, लेकिन हम ये सिचुएशन दिखा रहे हैं कि दीनदारों में फिर डिस्कशन का जो है ना वो टॉपिक कम हो जाता है, फिल्मों के कम होने की वजह से, अल्हम्दुलिल्लाह फिल्में कम हो जाती हैं। फिर जो है वो उसके अलावा लोगों की गीबतें, ठीक है, कि जो इस किस्म की पार्टीज होती हैं दुनियादारों में, जिस किस्म के गैदरिंग्स होती हैं, पार्टीज होती हैं, उसके अंदर बहुत ही गंदी किस्म की डिस्कशन हो रही होती है, मर्दों के दरमियान भी और औरतों के दरमियान भी, ठीक है। तो जब दीनदार बन जाते हैं तो ये डिस्कशन भी कम कम करनी पड़ती है, बिलाखिर खत्म करनी होती है, क्योंकि ये गीबत में आती है, और गीबत तो बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है, ठीक है। तो अब ये गीबत वाले भी जो है वो मसले खत्म हो जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, जरूरी है खत्म होना गुनाह कबीरा को छोड़ना। इसी तरीके से और भी चीजें होती हैं जो कि दीनदारों की जिंदगियों में खत्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है कि अब जो है ना वो हम लोग जो दीनदार बनते हैं ना, हमारा एक बहुत बड़ा मसला है, ठीक है। वो हमारा मसला पता है क्या है? हमारा मसला ये है कि हमारी मिसाल जो है ना वो है उर्दू के इस मुहावरे वाली मिसाल, जो कि अंग्रेजी में भी मुहावरा है, उसके इक्विवेलेंट है, वो क्या? आसमान से गिरा खजूर में अटका। क्या मतलब है? आसमान से गिरा खजूर में अटका, यानी जमीन पे नहीं पहुंचा, क्योंकि जब कोई ऊपर से गिरता है ना तो उसकी डेस्टिनेशन क्या होती है? जमीन। लेकिन ये जमीन तक नहीं पहुंचा, बल्कि खजूर में अटक गया। उसी तरीके से इसी का एक इक्विवेलेंट जो है वो अंग्रेजी में शायद ये वाला बनता है कि आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इन टू द फायर, ठीक है, कि फ्राइंग पैन में जल रहा था, वहां से तो निकल आया, लेकिन उससे निकलने के बाद जो है ना किसी ठंडी जगह पे पहुंचने की बजाय आग में गिर गया, ठीक है। तो आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इन टू द फायर, तो फ्राइंग पैन से निकलने का इसको कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा नुकसान ही हो गया, आग में चला गया। हमारा दीन का यही मसला है, ठीक है, हमारे दीन का यही मसला है। तो अब इसकी जो है ना वो तशरीह आप में से कोई करेगा, क्या मतलब है इस बात का कि हमारे दीन का मसला क्या है? आसमान से गिरा खजूर में अटका, या आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इन टू द फायर? तो हाउ डज इट रिलेट टू आवर डिस्कशन? ठीक है, हमारे दीन का क्या मसला है, या आप में से कोई डायग्नोज करके बताए जिसको के इन दो मुहावरों से या आज समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जी फिल्मों वाली मिसाल और गीबत वाली मिसाल और इस मिसाल को सामने रखते हुए मसला समझाएं कि हमारे दीन का क्या मसला है। हम लोग आसमान से गिरते हैं तो खजूर में क्यों अटक जाते हैं? यह आपने एक और मुहावरा बोल दिया, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो ये तो तीसरी आपने मुहावरा बता दिया ना, लेकिन समझाए ना इसका मतलब क्या है। अच्छा, इन्होंने लिखा कि वी लीव सर्टन थिंग्स लाइक मूवीज एंड म्यूजिक बट वी डोंट पुट एफर्ट इन टू एंगेजिंग इन गुड एक्टिविटीज लाइक डिस्कशन ऑफ चिल्ड्रंस तरबियत, ठीक है। तो ये अच्छा जवाब है, ठीक है, और यही आज असल में कहना भी चाह रहा था कि हम बुरी चीजों को तो छोड़ देते हैं, लेकिन हम जो है ना वो जो दीन का असल मकसद है ना, हम वहां तक नहीं पहुंच पाते, हम दरमियान में अटक जाते हैं, जैसे खजूर में अटक गया, ठीक है, हम दरमियान में अटक जाते हैं, हम असल मकसद तक नहीं पहुंच पा रहे होते हैं। असल मकसद जो है ना वो खाली ये भी नहीं है कि डिस्कशन ऑफ द चिल्ड्रन सरबियत, ये भी असल मकसद नहीं है। अच्छा, एक चंद और जवाब है, उनको भी पढ़ लेते हैं कि वी डोंट नो हाउ टू हैंडल द चेंजेस दैट कम अलॉन्ग, फॉर एग्जाम्पल वी रिमूव टीवी वीडियो गेम्स फ्रॉम आवर हाउसेस बट डोंट नो हाउ टू कीप आवर चिल्ड्रन बिजी विद अदर एक्टिविटीज, ठीक है। आप भी एक्टिविटीज ही की बात कर रही हैं, विच इज ऑल्सो गुड, ठीक ठीक है, वो भी जवाब सही था, आपका भी जवाब सही जवाब है, अच्छा जवाब है हमारी। और किसी और ने लिखा कि हमारी जिंदगी में से सब कुछ निकाल कर कुछ बचता ही नहीं, दीन को सीखते ही नहीं है जैसा सीखना चाहिए। ठीक है, चले सही है, अच्छे जवाब है, लेकिन कंप्लीट जवाब नहीं है। ठीक है, मुकम्मल जवाब नहीं है, अच्छे जवाब है। क्या मतलब कि हम जब दीन की तरफ आते हैं तो हम बहुत सारी चीजों को छोड़ तो देते हैं जो कि छोड़ना लाजमी है, वो फोर्स छोड़ना है उन चीजों को, वो हराम है वो चीजें। लेकिन एक तो ये कि अक्सर हम में से हलाल चीजों में एंगेज नहीं होते हैं, ठीक है, आमाल शुरू नहीं करते, माहौल के अंदर नहीं जुड़ते, दीन का इल्म हासिल करने के अंदर नहीं जुड़ रहे होते। अगर जुड़ भी रहे होते हैं तो वो भी कुछ जाहिरी अमाल की हद तक, वो भी कुछ जाहिरी अमाल की हद तक। और हम फिर ये समझना शुरू कर देते हैं कि ये जो चंद जाहिरी अमाल हमने करने शुरू कर दिए हैं ना, यही मुकम्मल दीन है, यही मुकम्मल दीन है। ठीक है, अब वो जो चंद जाहिरी अमाल आप कर रहे हैं तो भाई ये मुकम्मल दीन तो नहीं था, ये तो मुकम्मल दीन नहीं था, लेकिन आपने एक गैर मुकम्मल दीन को मुकम्मल दीन समझना जब शुरू कर दिया है, तो भाई जो आपने चीजें छोड़ी हुई हैं वो कैसे पूरी होंगी, जो खला जो गैप्स आपने छोड़े हुए हैं वो कहां से फुल होंगे। तो आपका दीन तो अधूरा ही है ना, अधूरे को पूरा समझ लेने से वो पूरा बन तो नहीं जाता। क्या ख्याल है, आप अधूरी चीज को पूरा समझना शुरू कर दें, गुमान करना शुरू कर दें, बोलना शुरू कर दें, तो क्या वो पूरा बन जाएगा? जैसे चांद होता है ना, चांद पूरा चांद मुकम्मल चांद, तो अगर आप जो है वो 10 तारीख के चांद को कहें कि ये पूरा चांद है, तो क्या वो पूरा चांद बन जाएगा आपके कहने से? नहीं, पूरा चांद तो भाई वो 14वीं को ही बनेगा, है ना। हमारा यही हाल है, हम आधे दिन को पूरा दिन समझना शुरू कर देते हैं और बोलना भी शुरू कर देते हैं कि ये पूरा दिन है, हालांकि वो पूरा दिन नहीं होता। तो भाई दीन जो है वो तो नबी अलैहिस्सलाम ने जैसा सिखाया है वो पूरा दीन है ना यार, हमारा बनाया हुआ दीन तो पूरा दीन नहीं होता अपनी तरफ से जो हमने बनाया हुआ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन तो भाई उस्वे हसना है, उस्वे हसना, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। उस्वे हसना के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है, मॉडल का लफ्ज, पूरा फुल 3 डायमेंशनल, कम से कम 3 डायमेंशनल मॉडल है, बल्कि 4 डायमेंशन उसमें ऐड कर लें। ठीक है, तो इसके साथ वो दीन पूरा होगा। तो भाई वो तो सोहबत से आता है, वो तो तरबियत से आता है, वो तो माहौल में जुड़ने से आता है, वो तो इल्म सीखने सिखाने से आता है। ठीक है, इसके अंदर तो, इस दीन के अंदर तो फिर नियत सबसे अहम चीज होती है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। ठीक है, इस दीन के अंदर तो खैर ख्वाही सबसे अहम चीज होती है कि अद्दीनो दीनो नसीहा, दीन तो सरासर नसीहत खैर ख्वाही का नाम है। ठीक है, और दीन तो मजालिस का नाम होती है जिसके साथ अमानत का मामला किया जाए। ठीक है, अल मजालिस बिल अमाना। ठीक है, और ये है ना पूरा मुकम्मल दीन। तो भाई ये सारी चीजें भी तो शामिल करेंगे तब पूरा दीन होगा ना, खाली जो है वो चंद नमाजें पढ़ लेने से और चंद जो है वो अहकाम पढ़ लेने से और जो है वो उनको अपने जिंदगी में ले आने से, ठीक है माशाल्लाह आपने 10% दीन कर लिया, समझ लिया आपने, 20% समझ लिया, 30% समझ लिया, लेकिन जब तक माहौल में नहीं जुड़ेंगे, जब तक जो है वो इन कैफियात के ऊपर मेहनत नहीं करेंगे या उनको अपना मकसूद नहीं बनाएंगे कि मेरे अंदर भी खैरख्वाही की कैफियात आ जाए, मेरे अंदर भी अल्लाह की खशियत की कैफियात आ जाए, अल्लाह की मोहब्बत की कैफियात आ जाए, आखिरत की फिक्र की कैफियात आ जाए, उस वक्त तक दीन नाकस रहेगा, बिल्कुल नाकस रहेगा। ठीक है, तो बच्चों की जो तरबियत है तो ये जो है ना ये किस चीज में शामिल होती है, ये अल्लाह के बंदों की खैरख्वाही में शामिल। ठीक है, क्योंकि बच्चा जो है वो आपकी औलाद जरूर है लेकिन उससे पहले वो अल्लाह का बंदा है या अल्लाह की बंदी है, तो उसकी खैरख्वाही जो है ना ये जब होगी तो हम उसके बारे में बात करेंगे, उसके लिए जो है वो अपनी फिक्रों को लगाएंगे, उसके लिए आपस में डिस्कशन भी करेंगे, और अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा होगा तो उसमें जो है वो हम नरमी का मामला करेंगे, अपने ओपिनियन को जो है वो फोरगो भी करने के लिए तैयार रहेंगे बच्चे की खातिर, बच्चे की खैरख्वाही की खातिर। ठीक है। तो इसी वजह से मियां बीवी जो है जब वो दीनदार बनते हैं तो फिल्में और म्यूजिक और इन चीजों को तो छोड़ देते हैं, लेकिन क्या अल्लाह के बंदों की खैर ख्वाही करनी शुरू करी? ठीक है, अल्लाह के बंदों की खैर ख्वाही की फिक्र शुरू करी? क्या उसके बारे में मियां बीवी आपस में बात कर रहे होते हैं? औलाद अगर है तो औलाद की खैर ख्वाही सबसे पहले आती है, लेकिन अल्लाह की ये औलाद के अलावा भी तो अल्लाह के बंदे हैं ना, आपके घर के दूसरे अफराद हैं, आपकी फैमिली के दूसरे अफराद हैं, ठीक है? क्या उनकी खैर ख्वाही अल्लाह के बंदों की खैर ख्वाही नहीं बनेगी? अपनी बहन के बारे में बात करें, अपने शौहर की बहन के बारे में बात करें, अपने जो है वो दूसरे रिश्तेदारों की बात करें कि हम अल्लाह के दीन की तरफ आ गए, हमारी जिंदगी से हराम खत्म हो गया, हमारी जिंदगी से ये टेंशन खत्म हो गई, अब उनकी जिंदगी में हम कैसे इसको लेकर के आ सकते? हम क्या करें, हम कैसे करें कि हमारे खानदान के दूसरे अफराद भी जो है वो दीन के अंदर आ जाए? इसके ऊपर क्यों नहीं शौहर के साथ बात करते? इसके ऊपर क्यों नहीं मियां बीवी आपस में बात करते? क्यों नहीं करते? इसलिए कि उनके ख्याल में दीन जो है ना वो टोपी पहनने से पूरा हो गया, इनके ख्याल में दीन जो है वो मैंने बुरका पहन लिया बस मेरा दीन पूरा हो गया, इनके ख्याल में ये जो है वो आलिम बनना शुरू हो गया इनका दीन पूरा हो गया, इनके ख्याल में वो आलिमा बनना शुरू हो गए उनका दीन पूरा हो गया, राइट? या उन्होंने चंद और इबादतें करनी शुरू कर दी इसका मतलब है कि उनका दीन पूरा हो गया? नहीं, दीन पूरा नहीं हुआ, दीन तो खैर ख्वाही के बगैर पूरा हो ही नहीं सकता, कैसे खैर ख्वाही के बगैर दीन पूरा होगा? ठीक है, तो ये चीजें, दीज आर टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन, सिर्फ फिल्में, म्यूजिक, डांसिंग और सियासत और क्रिकेट के मैच और ये पटांग अला बला जो कि दुनियादार लोगों के टॉपिक ऑफ डिस्कशन होती है, नो दिस इज नॉट द ओनली टॉपिक ऑफ डिस्कशन ना, ठीक है? तो अल्लाह के बंदों के बारे में बात करें, लेकिन खैर ख्वाही के साथ बात करें, दिल की भड़ास निकालने के लिए और उनकी बोझ और कीने के साथ उनके लिए बात करेंगी, उनके बारे में बात करेंगी तो वो गीबत का गुनाह बनेगा, खैर ख्वाही के साथ बात करेंगी तो वो आपके दीन की तरक्की का सबब बनेगा, ठीक है? तो इस तरह से फिर खाविंद के साथ जो है वो एडजस्ट करना होता है, हालात के साथ एडजस्ट करना होता है, चाहे वो खाविंद की वजह से हालात चेंज हो रहे हो, चाहे वो ससुराल की वजह से हालात चेंज हो रहे हो, चाहे वो जॉब चली गई उसकी वजह से हालात चेंज हो रहे हो, इंसान को अडेप्टेबल रहना होता है और ये इसके लिए जहनी तौर पर ही तैयार होना होता है, ये नहीं होता कि आप पहले से जो है वो ऐसे बन जाएं कि जैसे कि फ्यूचर में अगर ये हुआ तो मैं ऐसे ही हो जाऊंगी फ्यूचर में ऐसे, ये मामला नहीं होता, जहनी तौर पर ये सारी चीजें हो रही होती है ना, ठीक है? ये कोई वो नहीं है, मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं है, मिलिट्री में कैसे ट्रेनिंग करवाते हैं कि जो कमांडोज होते हैं ना उनको बड़ी बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की ट्रेनिंग हो रही होती है कि अगर वो दुश्मन के इलाके में गए तो वहां पर अगर उनको कीचड़ में से जो है वो गुजरना पड़ा तो कैसे गुजरेंगे, तो अब उनको कीचड़ में से गुजारा जा रहा होता है, ठीक है? अब उनको जो है ना वो अगर दुश्मन ने पकड़ करके इनको उल्टा लटका दिया तो फिर इनके कैसे उसको बर्दाश्त करेंगे, तो इस वजह से जो कमांडोज की ट्रेनिंग होती है उसमें उनको वाकई उल्टा लटका दिया जाता है, ठीक है? और कई कई घंटों तक उल्टा लटका करके छोड़ दिया जाता है, ठीक है? तो क्या इसका मतलब यह है कि लड़का और लड़की को शादी से पहले जो है ना वो पूरा का पूरा वही माहौल दे करके उल्टा लटका दिया जाए, कीचड़ में से गुजार दिया जाए, या उनको थप्पड़ उप्पड़ मारना शुरू कर दिया जाए ताकि अगर सास से थप्पड़ मारा तो ये तैयार रहे थप्पड़ खाने के लिए, है? या अगर जो है वो इनको जली कटी सुननी पड़ गई तो इनको माँ बाप जली कटी सुना रहे हैं ताकि अगर सास की जली कटी कटी सुननी पड़ी तो पहले से मैं सुना दूं उनको जली कटी, ठीक है? या शौहर साहब ने जो है वो अगर उनको नाउज बिल्ला अल्लाह ना करे किसी के साथ भी ऐसा कोई मामला हो, या बीवी ने जो है वो इनके जो है ना वो छट्टी का दूध याद दिलाना है तो माँ माँ कह रही है चलो मैं पहले छट्टी का दूध याद दिला देती हूँ उनको, ठीक है? ये सब नहीं करना होता, ठीक है? ये सब नहीं करना होता, बल्कि जो जिंदगी के अंदर जरूरियात आती हैं, जैसे लड़के को जो है वो कमाना सिखाना होता है, लड़के को जो है वो बाहर के काम करने सिखाने होते हैं और सेंसिबिलिटी सिखानी होती है, ठीक है? उसी तरह लड़की को जो है वो जो उसके करने के काम होते हैं वो चीजें सिखानी होती हैं और जरा नाज नखरे वगैरह जो है वो उनका कम आदि बनाना होता है, बस दैट्स इट, इससे ज्यादा कोई कमांडो ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ती, घर के काम काज, जिस तरह भाई लड़के को भी जाना, शादी करने के बाद तो नहीं अब तुम जाकर के तालीम हासिल करना शुरू करोगे कि शादी करने के बाद जो है वो, चूंकि अब मुझे बीवी को खिलाना है तो अब मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, क्या ख्याल है? लड़का अगर कहे कि पहले तो अब्बा में मुझे खिला रहे होते थे, मैं अपने अम्मा अब्बा के साथ रह रहा होता था, तो मुझे क्या जरूरत थी पढ़ने पढ़ने लिखने की, अब जब बीवी आई है तो मैं पढ़ना लिखना शुरू करता हूँ, ठीक है, फिर जब पढ़ लिख के मुकम्मल कर लूंगा फिर उसके बाद जो है वह मैं कमाई भी शुरू कर दूंगा, क्योंकि अब बीवी आ गई है। सही है ना, ऐसे ही करना चाहिए ना लड़कों को? नहीं, लड़कों को ऐसे नहीं करना चाहिए, लड़कों को पहले से पढ़ना लिखना चाहिए, पहले से कमाना चाहिए, फिर उसके बाद शादी करेंगे। तो लड़की जो है वो क्यों गृहस्थी और घर के जो जिम्मेदारियां हैं और औलाद की जो के लिए जो इल्म उसको चाहिए है और घर के लिए जो इल्म उसको चाहिए, वो शादी के बाद क्यों शुरू करती है? शादी से पहले वो कंप्यूटर साइंस क्यों पढ़ रही होती है? शादी से पहले वो इंजीनियरिंग क्यों कर रही होती है? शादी से पहले वो मेडिकल साइंस क्यों कर रही होती है? इसी नीयत से कर रही होती है ना कि जब शौहर आएगा, जब मेरा अपना घर होगा, तब मैं सीखना शुरू करूंगी, पहले इंजीनियर बन जाती हूँ, राइट? पहले इंजीनियर बन जाती हूँ, पहले जो है वो डॉक्टर बन जाती हूँ, पहले जो है मैं लॉयर बन जाती हूँ, पहले जो है फलाइन, जब शौहर आएगा तब देखी जाएगी। भाई यही उसूल आप लड़के पे क्यों नहीं अप्लाई करते कि जब बीवी आएगी तब देखी जाएगी? क्योंकि शैतान ने हमारी अकलों को खराब कर दिया, इसी वजह से एक तरफ हम ये उसूल अप्लाई करते हैं, दूसरी तरफ हम दूसरा उसूल अप्लाई कर रहे होते, ठीक है? और लड़की को तालीम का जेवर यानी इंजीनियरिंग, डॉक्टरिंग और मेडिकल साइंस और लॉ और मना जाने क्या क्या जो है वो पढ़ा रहे होते हैं कि जब शादी करेगी तब तब देखा जाएगा, कि वो पता चलता है कि वो तो ऐसे ही हो गया ना, जैसे लड़का जो है वो शादी करने के बाद कहे कि अच्छा अब मैं पढ़ना शुरू करूंगा, ठीक है? ये चीजें अगर समझ में आ रही हैं, उम्मीद है कि पहले से बहुत सारों को समझ में आ चुकी हैं, लेकिन अब खैर ख्वाही, अद्दीन और नसीहा, अद्दीन और नसीहा, ये दूसरों को क्यों नहीं समझाते, दूसरों को क्यों नहीं बताते ये वाली बातें, और इस अंदाज में क्यों नहीं बताते कि जिसका कोई इनकार ना कर सके? आप ऐसे अंदाज में क्यों बोलती हैं कि जिसका इनकार करना जो है छोटे बच्चे के लिए भी बहुत ही आसान काम होता है? बेवकूफी की बातें करेंगी दूसरों को जाकर के तो वो तो आराम से उसका इनकार कर देंगे, क्योंकि आपकी बातें इतनी सेंसलेस होती हैं, ठीक है ना? उलमा की कदर करनी चाहिए, अभी पिछले दिनों बात हो रही थी किसी से, उलमा की कदर करनी चाहिए। भाई क्यों कदर करनी चाहिए यार? क्योंकि मैं करता हूं कदर, इस वजह से तुम्हें भी कदर करनी चाहिए, ये कोई बात हुई? नहीं, पता है नहीं क्यों कदर करनी चाहिए, बस लोगों को बोल रहे हैं उलमा की कदर करनी चाहिए। क्यों कदर करनी चाहिए भाई, ये तो समझाए ना अगले बंदे को। उसी तरीके से औरत को नई करियर ओरिएंटेड बनना क्यों नहीं बनना चाहिए भाई, ये तो समझाया ना, क्यों नहीं बनना चाहिए करियर ओरिएंटेड, जिसको कि आजकल जो दुनिया के निजाम चला रहे हैं, क्यों नहीं बनना चाहिए? रीजन होनी चाहिए आपके पास, आपके पास दलील होनी चाहिए, और दलील है मौजूद, बस ये है कि तवज्जो से सुन करके उसको नोट नहीं करते, ठीक है? तो खैरख्वाही करना भी जो होता है ना वो भी सीखना पड़ता है, सीखें और खैरख्वाही करें तब दीन मुकम्मल होगा, तब दीन मुकम्मल होगा, वजीफे झेपने से और तस्बीहें फेरने से दीन मुकम्मल नहीं होगा, ठीक है? अल्लाह ताला बात की समझ हम की तौफीक अता फरमाए, वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व